ओम शांति। जैसे अभी सुशील भाई जी बता रहे थे बहुत सारे कॉग्निटिव कंट्रोल, तो थोड़ा सा किसी को जिनको उसके बारे में पता है तो ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट का टाइटल है दिस इज फॉर ब्रिंगिंग इक्वानिमिटी इन द माइंड, इफेक्ट ऑफ राजयोगा ऑन कॉग्निटिव कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबल बिहेवियर। ये जो इक्वानिमिटी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये जस्ट डिक्शनरी डेफिनेशन इसमें डाल दिया हूँ कि इक्वानिमिटी इज अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड कंपोजर विच इज अनडिस्टर्ब्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ और एक्सपोजर ऑफ इमोशंस, पेन और अदर फेनोमेना दैट मे कॉज अदर्स टू लूज द बैलेंस ऑफ देयर माइंड। ना जिस एक परिस्थिति है जिसमें दूसरे को बैलेंस ऑफ माइंड चला जाता है, तो उसी में हमारा जो साइकोलॉजिकली हम लोग स्थिर स्थित प्रज्ञ रहेंगे उसको इक्वानिमिटी कहा जाता है। तो ये कहने की जरूरत नहीं कि ये जो इक्वानिमिटी ये हमको राजयोग से प्राप्त होता है, तो इसलिए इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट रखा गया है। तो मैं जस्ट वेरी वेरी सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे हमारा जो परिवर्तन है, हम ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति करते हैं संगमी पर, जिसके आधार से हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के बन जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस है जैसे बाबा बोलते हैं ना मुरली में, ज्ञान माना समझ। तो जो अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ वो है ज्ञान, और धर्म माना धारणा। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म माना हम सभी के अंदर दिव्य गुणों की धारणा होता है। तो ये जो समझ से हम ट्रांसफॉर्मेशन होके जो हम धारणा तक पहुंचते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस का जो रिक्वायरमेंट है वो है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन इज द टूल, ये राजयोग के आधार से हम ईश्वरीय ज्ञान से के आधार से फिर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनते हैं। ठीक है, फिर हम जो से ज्ञान में सब फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ। जैसे मन बुद्धि और संस्कार, ये तीन चीजें रहता है। मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, मन वो उसका काम कंटिन्यूअसली थॉट पैदा करना है। संस्कार के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल है बुद्धि के ऊपर। बुद्धि को हम राजयोग से आधार से पावरफुल बनाते हैं ताकि मन कैसा भी हो, मन में कैसा भी थॉट्स पैदा हो, लेकिन उसको फिल्टर कर देता है। जब ये फिल्टर कर देता है बुद्धि, तो हमारे कर्म वो फिल्टर्ड थॉट के आधार पर होता है, जिसके आधार से हमारा संस्कार परिवर्तन होता है। तो बुद्धि के अंदर इच्छा शक्ति विल पावर रहता है और मेडिटेशन में वो पावरफुल होता है। लेकिन बुद्धि में जो चीजों के आधार से हमारा जो पुराने चीजों के ऊपर कंट्रोल होता है, या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशन के ऊपर कंट्रोल होता है, उसको मेडिकल लैंग्वेज में, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कॉग्निटिव कंट्रोल कहा जाता है। क्लियर हुआ सबको? तो कॉग्निटिव कंट्रोल में क्या होता है, बेसिकली हमारा दो चीजें मेनली होता है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेसिंग। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग माना क्या है, जो भी देखते हैं उसका हम कुछ अर्थ निकालते हैं, और हमारा जो बुद्धि में जो हर चीज के बारे में जो लक्ष्य है उससे उसको रिलेट करते हैं। अगर उससे हमारा कुछ फायदा का चीज है तो हम उस पर ध्यान देते हैं, नहीं तो हम उसको इग्नोर करते हैं। दूसरा चीज है स्ट्रेटेजिक प्रोसेसिंग, अटेंशन एलोकेशन, हम किस पर अटेंशन देंगे। वेजिटेबल मार्केट देंगे जाएंगे, अगर 10 वेरायटी का वेजिटेबल मिलता होगा और सभी वेजिटेबल वेंडर चिल्लाते होंगे ये आलू इतना रुपया केजी, टमाटर इतना रुपया केजी, बैंगन इतना रुपया केजी, लेकिन अगर हम बैंगन खरीदने के लिए जाएंगे तो हम आलू वाले टमाटर वाला जो चिल्ला रहे हैं उसे नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ ध्यान देंगे जो बैंगन की कितना केजी है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये इसकी जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना, देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, माना हम सुनेंगे बट उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई अटेंशन ही नहीं जाएगा। तो वो कॉग्निटिव कंट्रोल से होता है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स मैपिंग, जो से हमारा कोई भी चीज होता है तो उसको हम कैसे हम रिएक्ट करेंगे। सोचिए कोई मच्छर बैठता है, तो कभी भी मच्छर बैठता है तो हम उसको मार देते हैं। नींद में सो जाएंगे, मच्छर काटेगा तो हाथ ऑटोमेटिकली जाके मारेगा उसको। ये बिकॉज दिस इज प्रोग्रामिंग हो जाता है, मैपिंग हो जाता है क्या होने से क्या रिजल्ट करेंगे। तो जिसको हम जैसे ज्ञान में ओम शांति बोलते हैं, तो अचानक किसी को देखे तो ऑटोमेटिकली ओम शांति निकल आता है। तो ऐसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कोई भी घटना के लिए जो मैपिंग, ये कॉग्निटिव कंट्रोल से होता है। फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, मेडिटेशन के बारे में मैं कोई फंडामेंटल ये नहीं बताने वाला हूँ क्या मेडिटेशन में, इसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में मेडिटेशन में क्या होता है मैं बता देता हूँ इस स्लाइड में, कि मेडिटेशन इज सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटेजी। अपने आप को कैसे रेगुलेट करना है, अपने लाइफ को कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो मेडिटेशन से आता है। मेडिटेशन फोकसेस अटेंशन, हमारा जो अटेंशन, जैसे शिव बाबा के ऊपर हम जितना ध्यान केंद्रित करेंगे मेडिटेशन में, हम जो लौकिक काम करते हैं भी उतना भी फोकस्ड होकर रहेंगे। जो इसका मेडिटेशन ठीक से नहीं होगा, इसका लौकिक काम भी ठीक से नहीं होगा, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। मेडिटेशन एनहांसेस अवेयरनेस, माना देखते हुए नहीं देखना है, माना देखेंगे बट अवेयरनेस रहेगा, बट इट विल नॉट अफेक्ट अस, इसको कहते हैं ना अवेयरनेस 100% रहता है। मेडिटेशन रेगुलेट्स इमोशन, हमारा जो कोई भी सिचुएशन के प्रति जो रिएक्शन होता है हमारे अंदर, वो उसको रेगुलेट कंट्रोल कर देता है। मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड अटेंशन सिलेक्शन इन द प्रेजेंट, माना जो हमारा जो अतीत की जो अनुभूति है, माना किसी को जैसे रिवेंज टाइप का मोटिव रहता है, किसी कोई व्यक्ति हमारा लॉस करता है तो लोग क्या करते हैं, उसको देखते ही उसके साथ खराब एक्सपीरियंस है तो दे विल गिव द नेगेटिव इमोशंस। और बाबा हमको क्या समझाते हैं कि निंदा कम हमारा जो करे मित्र हमारा सोई, तो हमारा एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और जितना हम मेडिटेशन करेंगे उसको उतना प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो सिमिलरली इट द नेक्स्ट ऑल्सो सेम, तो डिसएंगेजमेंट, जो पहले जो संस्कार जो हम पहले जो लौकिक में हम संस्कार के आधार पर कर्म करते हैं, संस्कार को डिसएंगेज करके नई तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, इन अदर लैंग्वेज, हम मेडिटेशन एनहांसेस आवर कॉग्निटिव कंट्रोल। ये सब चीज लौकिक लोगों में कंट्रोल नहीं होता है, मेडिटेशन जो करते हैं सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल होता है। तो जैसे हम एनहांसिंग कॉग्निटिव कंट्रोल बोले कि जो, तो कैसे कैसे एनहांस होता है, थोड़ा सा इसको पुराना चीज का रिविजन प्लस कुछ नई चीजों की बताते हैं। कि पहले अटेंशन सिलेक्शन होता है, हम जो देखना चाहते हैं सिर्फ वही देखेंगे, बाकी कुछ भी होता है हमारा अगर जरूरी नहीं तो नहीं देखेंगे। बाबा बोलते हैं ना लक्ष्य पर ध्यान रखो, साइड सीन मत देखो, तो वो उसका अर्थ होता है। ह्यूरिस्टिक्स फॉर एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, ह्यूरिस्टिक्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, मैंने सिस्टमेटिक जो डिसीजन मेकिंग होता है अचानक, बाबा बोलते हैं ना अचानक एवर रेडी, अचानक में वो काम नहीं करता है। तो यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन, तो कैसे क्विकली रिजोल्व करेंगे, किसी के घर में आग लग जाएगा तो हम विल ट्राई टू गेट द, कहीं पे पानी जल्दी मिलेगा तो वही लाएंगे, फिर नॉर्मली जो प्रोसेस जाएंगे म्यूनसिपलिटी को फोन करेंगे वो पानी लाएगा, ये सब नॉर्मल प्रोसीजर में आता है। लेकिन क्विक डिसीजन मेकिंग में जो जितना एक्यूरेट होंगे उतना सक्सेस पाएंगे। तो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग, जितना हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम एक्टिवली मॉनिटर कर पाएंगे, उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। डी ऑटोमाइजेशन ऑफ हैबिचुअल रिस्पॉन्स, माने संस्कार से मुक्ति, पुराने संस्कार से हमको मुक्ति मिल जाता है, हैबिचुअल रिस्पॉन्स जो उससे हम ऑटोमेटिक जो होता है हैबिचुअल रिस्पॉन्स उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इंक्रीज इन इंटेलिजेंट बिहेवियर, वी कैन इंटरप्रिट एवरीथिंग, उसका सही अर्थ जैसे बोलते हैं सभी में अच्छा ही देखना है, तो व्हेन वी स्टार्ट हैविंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड तो वी आवर बिहेवियर बिकम इंटेलिजेंट। तो इट ब्रिंग्स कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीजेस वर्बल फ्लुएंसी और प्रोडक्शन ऑफ अनयूजुअल एसोसिएशन, अचानक किसी से हम सबके साथ मिलनसार रहते हैं तो कोई किसी भी संस्कार के व्यक्ति के साथ हम जब मेडिटेशन करते हैं कॉग्निटिव कंट्रोल प्रॉपर रहता है तो हम उनके साथ क्विकली संस्कार मिलन कर सकते हैं। जैसे समय के काम के कारण जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे ये ह्यूरिस्टिक्स जो होता है तो ये क्या है ना, इट डील्स विद अनसर्टेनिटी, जो सिस्ट अचानक माना अनएक्सपेक्टेड जो चीज होता है उसके ऊपर हमारा माइंड का बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। अचानक किसी का कोई क्लोज रिलेटिव है बहुत यंग एज में शरीर छोड़ दिए, तो दे आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सडनली दे विल ट्राई टू लूज देयर माइंड। किसी का बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो जाता है अचानक, सब ठीक चलता है अचानक, तो ऐसे बहुत सारे लाइफ में अचानक होता है। तो वी नीड टू हैव द कंट्रोल इन ए क्विक डिसीजन मेकिंग, जिसको ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। और नेक्स्ट स्लाइड में भी ये बताया गया है कि कैसे हम कॉमनली यूज करते हैं, तो ये हमारा जो रिड्यूस करता है मेंटल एफर्ट नीडेड फॉर मेकिंग डिसीजन। हम बहुत नेचुरल वे में, जैसे बाबा जितना मुरली में जितना ज्ञान सुनाते हैं, अगर बुद्धि में वो परमानेंटली बैठ जाएगा तो हमारा डिसीजन बहुत क्विकली इफेक्टिव और सक्सेसफुल होगा। तो ये प्रोजेक्ट का एम है हाउ टू फाइंड द कॉग्निटिव कंट्रोल, कैसे कितना इफेक्टिव होता है। ये जो मेथड होगा, जनरली हम आज तक जितने प्रोजेक्ट किए हैं राजयोग जो करते हैं वर्सेस जो राजयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट होगा जो नाम के वास्ते राजयोग करते हैं और राजयोगी वर्सेस राजयोगी, दिस प्रोजेक्ट जो सीरियसली राजयोग करते हैं और जो सीरियसली नहीं करते हैं मेडिटेशन। तो सेंटर में ऐसे बहुत होते हैं ना, हफ्ते में एक बार आते हैं मुरली, कभी कभी क्लास में आते हैं, तो वर्सेस देयर आर सम पीपल हु आर कम रेगुलरली डेली अमृतवेला से लेकर सारा दिन चर्या उनका ठीक रहता है, तो वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ डिफरेंस। तो क्या करेंगे हम 30 से इसका एक ग्रुप बनाएंगे अपने अपने लौकिक जगह पे, तो एज ग्रुप रहेगा 20 to 65 years। सो विल फर्स्ट ग्रुप में कंट्रोल बीके और दूसरा ग्रुप में एक्सपेरिमेंटल बीके। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम सब कुछ ज्ञान की जो भी उनका थोड़ा बहुत कमी है उनको भर के पूरा आइडियल लाइफस्टाइल बीके लाइफस्टाइल उनको मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। बाकी जो जैसे ये होते हैं नॉर्मल लाते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी संपर्क वाले थोड़ा थोड़ा योग करते हैं, तो उनका शुरू में कंपैरिजन होगा आफ्टर 30 days, फिर से उनका रीडिंग लिया जाएगा जिसके आधार से उनका बस कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रुप को, लेकिन जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे उनका थोड़ा सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सिर्फ बेसिक इंग्लिश पढ़ना है बस, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जब हम एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम उसकी जरूरत है। तो ये जो कुछ चीजें जिसका पेशेंट है साइकोलॉजिकल पेशेंट या मेंटल डिजॉर्डर इस टाइप का कुछ जो हेल्थ मेंटल हेल्थ डिजॉर्डर वालों को ये प्रोजेक्ट में हम नहीं लेंगे। फिर जो तीन वेराइटी में उनका क्वेश्चनेयर किया जाएगा, एक राज्य को प्रैक्टिस चेकर क्वेश्चनेयर जिसके आधार से उनका योग की गहराई मेजर किया जाएगा, जो एक साइकोलॉजिकल स्केल क्वेश्चनेयर जैसा लौकिक में बहुत सारे क्वेश्चनेयर है, सो उसके आधार से उनका साइकोलॉजिकल लेवल मेजर किया जाएगा। फिर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड कॉग्निटिव टास्क दिया जाएगा, उसके आधार से उनका टेस्ट हो जाएगा, तो उसमें डिफरेंस पता चढ़ जाएगा। जब हम सीरियसली राजयोग करते हैं हमारा कितना चेंजेस होता है, तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये सब बातें, जो भी 30 दिन के बाद और 30 दिन शुरू में और 30 दिन के बाद उनके सब डाटा लेके एक कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाएगा, फिर उसका रिजल्ट सबके सामने रखा जाएगा। तो उसके लिए जो भी भाई बहने अपने सेंटर में ऐसे ग्रुप बना सकते हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड इज प्रेफरेबल, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। और जिसमें जो भी ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरेस्टेड है वो मुझे पर्सनली मिल सकते हैं या स्पार्क ऑफिस में हूँ। तो बस इतना ही, ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 1 year के अंदर देखते हैं कितना सेट हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उसके बाद इसका रिजल्ट सबके सामने रखेंगे। ओम शांति। नाम संजीव साहू है। अच्छा, टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए 9449067400। एक मिनट, लेट्स क्लोज इट। 9449067400
ईमेल आईडी,
ईमेल bksanjeev@yahoo.com। SANJIB, जैसे मैं शुरू में था ना मेरे स्लाइड में, SANJIB, बोथ साइड्स बी फॉर बॉम्बे जी। 9449067400 yahoo.com। ठीक है, मैं देख देता हूँ। ठीक है, अभी हम एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किए हैं, हमारा राजीव भाई इज फ्रॉम बॉम्बे, तो बहुत एक्टिवली इस पार्क में एक बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर भी काम करते हैं, और एक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कॉल्ड ब्रह्मा प्रोजेक्ट। तो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू टेल अबाउट द प्रोजेक्ट इन डिटेल। ओम शांति। थैंक्स।
ओम शांति। तो आज आपको दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। पहला प्रोजेक्ट जो है ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इसको शॉर्ट में मैंने नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका नाम है ब्रह्मा प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना, बाबा को प्रत्यक्ष करना, क्योंकि अगर ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष होंगे तो ब्रह्मा बाबा से कौन कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली शिव बाबा की भी प्रत्यक्षता हो सकती है। तो ये ऐसे इसका एम हम लेके चल रहे हैं कि बाबा के बारे में लोगों को जानकारी मिले। और इस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है कि सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट्स के थ्रू भारत का इमेज और भारत में कहां कहां ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ऐसे तो बाबा मुरली में कहते हैं ब्रह्मा का मंदिर कहां पर है, पुष्कर में है, लेकिन पुष्कर के अलावा राजस्थान में भी और भी ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे ब्रह्मा की पूजा होती है, लेकिन मेन जो मुख्य मंदिर है वह पुष्कर का है। और हमको लगता है सिर्फ भारत में ही होता है, ऐसे नहीं है, विदेश में भी ब्रह्मा के मंदिर हैं। तो इस सैटेलाइट इमेजरी से कहां जहां जहां ब्रह्मा के टेम्पल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट किए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के निमित्त जो है अपनी जो है कलाई थी निर्मला दीदी जो है निमित्त बनी है और उनके साथ एक बहन है जिनका नाम है नियम बहन, जो थाईलैंड से हैं एंड शी इज अ स्पेस साइंटिस्ट। और उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और थाईलैंड के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शन है, तो बाबा ने हमें भी निमित्त बनाया इस प्रोजेक्ट में। तो ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इसका जो कंटेंट जो डिजाइन किया गया है वह स्वयं ब्रिजमोहन भाई जी ने डिजाइन किया है। मुझे याद है ब्रिजमोहन भाई जी थाईलैंड के स्वर्ण भूमि सेंटर पे थे और वहां पे उन्होंने 4 दिन डिवोट किया और इसके कंटेंट को बहुत अच्छे से डिजाइन किया, तो उनका भी पार्टिसिपेशन है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उस प्रोजेक्ट पे जो हम काम कर रहे हैं और साथ साथ में इसके आउटकम क्या होंगे, इसकी बहुत अच्छी एक बुक बनाई जाएगी, वेबसाइट्स भी और छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए करुणा भाई ने भी अपना सहयोग दिखाया है। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा प्रोजेक्ट चल रहा है। इस ब्रह्मा प्रोजेक्ट में हम दिखाने वाले हैं एक्चुअली में स्टोरीज, ब्रह्मा के संबंधित जितनी भी कहानियां हैं देश में विदेश में, और उनके ब्रह्मा के संबंधित जितनी भी मूर्तियां हैं उनके आर्काइव जो है हम इकट्ठा करने वाले हैं। और ये जैसे कि भारत और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहा है उस टाइप का प्रोजेक्ट है। इसका टाइटल में ही बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे फाइनाइट रूट इनफाइनाइट वैल्यूज और ब्रह्मा की भक्ति का इम्पैक्ट क्या है, ब्रह्मा की जो भी आराधना होती है उसके बारे में चर्चा की जाएगी और ब्रह्मा के संबंधित कौन कौन से स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी का पूरा फाउंडेशन किसके ऊपर है, नाम ही शुरुआत में ब्रह्मा है। तो इस प्रकार बाबा की बातों का भी परिचय जो है ब्रह्मा के संबंधित इस प्रोजेक्ट में जो है दिया जा सकता है। और साथ ही साथ ब्रह्मा के संबंधित जितने भी जो मेमोरी कनेक्टिविटी है कहानियां हैं, साथ साथ में ब्रह्मपुत्र शब्द आता है, ब्रह्मास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है, उनका भावार्थ क्या है उसको भी इस बुक में इंक्लूड किया जाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करने में का ये जो है ये प्रोजेक्ट है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं सामने किसकी मूर्ति है, ये ब्रह्मा की मूर्ति है पुष्कर, बाबा जो मुरलियों में याद करते हैं ना, पुष्कर में ब्रह्मा की मूर्ति है। थोड़ा और भी क्लियर फोटो आप सामने देख रहे हैं, है ना, और यह है पुष्कर टेम्पल। हाँ अभी मुझे लग रहा है विजिबल है, तो ब्रह्मा की स्टैचू है, आइडल है। ये थोड़ा और भी क्लियर कट पिक्चर्स हैं, पुष्कर का वो मंदिर और वो तालाब जहां पे मेला लगता है हर वर्ष। लेकिन हमको लगता है कि ब्रह्मा का यादगार केवल भारत में ही है, लेकिन भारत में ही नहीं विदेश में भी है। ये थाईलैंड में जो है टेम्पल है जहां पे हजारों लोग आते हैं और ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, थाईलैंड में जो कि बुद्धिस्ट कंट्री है, बेसिकली देखा जाए बुद्धिज्म का ज्यादा है प्रभाव है। तो ब्रह्मा एक ऐसे ब्रह्मा को देव माना गया है जिनकी आराधना बुद्धिज्म में भी होती है, कितने आश्चर्य की बात है। और ये सोने की मूर्ति है और उस प्रतिमा के सामने जो है डांस ऑफर किया जा रहा है। ये एरावन टेम्पल है बैंकॉक में, सामने आप चित्र में देख रहे हैं, और ये सोने की प्रतिमा। साथ में कंबोडिया में भी जो है ब्रह्मा की प्रतिमा पाई गई है। तो इस प्रकार देखें तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और विदेशों तक में ब्रह्मा का यादगार है। आज भी जब कुछ बात होती है तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि भाई ये तो बाबा आदम के जमाने की चीज है, लोग ऐसे यूजुअली फ्रेज यूज करते हैं, मतलब बाबा आदम का जमाना बहुत पुराना था, तो बाबा आदम कहें एडम कहें मैं समझता हूं, या सेंटा क्लॉज क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं देखा जाए, तो मैं समझता हूं शिव बाबा की उपासना सब धर्मों में होती है, लेकिन शिव बाबा के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है ना वो ब्रह्मा बाबा का आता है। इसलिए हम देख रहे हैं हर धर्म में ब्रह्मा की कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आराधना है। तो इस प्रकार ये प्रोजेक्ट इस बात को कवर करता है। अब ये रहा पहला प्रोजेक्ट, और इसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो लोग स्पार्क से एक्सपेक्ट भी करते हैं, वो है साइंटिफिक एफएक्यूज, साइंटिफिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहने साइंटिफिक क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार लोग उसको स्पष्ट तरीके से उसका विस्तार नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्रह्मांड जो है 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है, जबकि बाबा का ज्ञान क्या बताता है 5000 ईयर्स। तो अगर कोई हमसे पूछे तो हम उसका आंसर कैसे करेंगे, या बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, या आजकल देखते हैं सबसे करंट थियोरीज जो चल रही हैं, जैसे कि बिग बैंग थियोरी चल रही है, उसके बारे में उनकी क्या मान्यता है और बाबा के ज्ञान की क्या मान्यता है। और मैं समझता हूं इस पे ऑलरेडी जगदीश भाई ने काफी अच्छा प्रकाश डाला है अपनी बुक एटर्नल वर्ल्ड ड्रामा में। तो यहां पे जो बहुत सारी बातें हैं ये मेरी खुद की बातें नहीं है, ऑलरेडी जगदीश भाई ने इस पे काफी अच्छा काम किया हुआ है। फिर चक्र 5000 ईयर्स का कैसे है, या इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में क्या बताएंगे। आमतौर पर दुनिया में मान्यता है कि मनुष्य पहले क्या था, जबकि सिचुएशन अलग हो चुकी है वो अलग बात है, लोग मानते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था, है ना, इवोल्यूशन थ्योरी है एक फॉर एग्जाम्पल, बट हमारी मान्यता यह है कि नहीं मनुष्य पहले क्या था। तो अगर कोई पूछे और हमारा इतना साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है तो उसको हम सरल भाषा में कैसे उसका स्पष्टीकरण करें, तो उन बातों को कवर किया जाएगा। फिर जो है ब्रेन और सोल के बारे में क्या कहा गया है, साइक्लिक टाइम के बारे में क्या कहा गया है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न। तो आप समझ पा रहे हैं साइंटिफिक एफएक्यूज का मतलब क्या हुआ। तो आपको क्या करना है, जो जो लगता है कि सबसे डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपको कागज पे नोट करना है और काउंटर पे आपको जमा करना है, जो आपको लगता है कि हम इतने अच्छे से उसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अगर लग रहा है कि नहीं घर जाने के बाद भी आपको याद आता है, तो यहां पे हमने ईमेल एड्रेस भी लिखा है स्पार्क विंग का, यहां पे आप मेल कर सकते हैं कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, साइंटिफिक क्वेश्चन हो, प्रोवाइडेड हम कोई और डोमेन नहीं कवर कर रहे हैं, साइंटिफिक डोमेन। तो स्पार्क की टीम क्या करेगी, उस प्रश्न का उत्तर देगी ऑडियो या तो वीडियो, जो स्पार्क यज्ञ से या तो स्पार्क से सर्टिफाई होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद ही स्पार्क के चैनल पे आएगा, ताकि लोगों में साइंस की अवेयरनेस फैले। स्पार्क से सर्टिफाई करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आजकल कई बार लोग क्या करते हैं विज्ञान के विस्तार में इतना चले जाते हैं जो बाबा के ज्ञान से कुछ और ही डेविएट होके कोई और रास्ता पकड़ लेते हैं। इसलिए स्पार्क ऑफिस से सर्टिफाई होने के बाद उस वीडियो या ऑडियो को चैनल पे डाला जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अभी छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल कवर करूंगा। आज की मुरली आपने सुनी होगी, आज की मुरली में बाबा ने किस बात को पे ज्यादा जोर दिया, और बाबा ने बताया ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अब क्या होता है, हमारे बहुत सारे भाई बहने भावनावश जो है बाबा पे निश्चय तो रहता है, लेकिन हूबहू रिपीटेशन की बात को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ऐसे कैसे हो सकता है ड्रामा हूबहू, बट मैं आपको बता देता हूं बाबा जो बात बता रहे हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ये एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, बाबा कैजुअली नहीं बता रहे हैं। कैसे, आज उसका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपके सामने, एक प्रश्न का उत्तर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक प्रश्न का उत्तर का थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपके सामने रखता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब हम कहते हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो इसमें कई बार देखा गया है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी माताओं को होता है, मालूम है क्यों, माताएं मालूम है क्या कहती है, कहती राजीव भाई मेरा पति मुझे को बहुत परेशान करता है, तो क्या 5000 साल के बाद यही पति मिलेगा। तो मैं सोचता हूं कि मैं उनको क्या उत्तर दूं अभी। तो अब कल्पना कीजिए कि ये माता को पति बहुत परेशान कर रहा है और इसलिए बाबा को बहुत ज्यादा याद करती है, इतना याद करती है कि सतयुग में कृष्ण के साथ पहुंच जाती है, कृष्ण के साथ रास कर रही है, और राजीव भाई क्या करता है, स्पार्कलर संगम युग से सीधा फ्यूचर में ट्रैवल कर जाता है और सतयुग में माता के पास पहुंच जाता है और उस माता से प्रश्न करता है कि कैसे लग रहा है। बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कृष्ण के साथ रास कर रही हूं। अच्छा अभी हम आपका पार्ट चेंज करें, माता एग्री होगी? क्यों, क्या हुआ? अभी कॉन्टेक्स्ट चेंज, पूरा मूड चेंज हो गया? नहीं नहीं अभी आपका पार्ट किसी और को देंगे, चलेगा? देखो अभी मैं उतर नहीं दे रहा, यहां से माता है उतर दे रही है सर। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसको हम साइंटिफिकली कैसे समझा सकते हैं उसका आज थोड़ा सा मैं एक प्रयास कर रहा हूं, अगर समझ सके तो बहुत अच्छा। पहले तो मैं कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूं, दो हमारे यहाँ पे बहुत बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कई लोग क्या मानते हैं, अब बाबा का मानना है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, मतलब अगर एक मक्खी उड़ी तो 5000 साल के बाद भी मक्खी वैसे ही उड़ेगी। अच्छा अब प्रश्न है, कई लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, रोल चेंज होते रहता है, रोल ना आपका भी हस्बैंड का रोल चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। ऐसा होता है? जी नहीं, किसी का भी रोल चेंज नहीं होता है, रोल वही रहता है। आज ब्रह्मा नारायण का रोल मिला है तो क्या हिटलर को कल चांस मिलेगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ड्रामा में पहली बात, पहला मिथ ये क्लियर करता हूं, ड्रामा में रोल चेंज नहीं होता, रोल भी वैसे ही रिपीट होता है। दूसरा मिथ, कई बार मैंने कई लोगों को एग्जाम्पल देते पाया थिएटर का, थिएटर पे मूवी जो है 3 घंटे की होती है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। वो क्या कहते हैं, 3 घंटे की मूवी रिपीट होती रहती है, लेकिन जो थिएटर रहता है ना जहां पे मूवी प्ले हो रही है वो तो कई वर्ष पुराना हो सकता है। क्या एग्जाम्पल सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? देखिए अभी लोग, अच्छा जो समझते हैं सही है हाथ ऊपर करें, जो समझते हैं गलत है वो हाथ ऊपर करें, और जो दोनों में हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहें? रियलिटी ये है, देखिए ये एग्जाम्पल सही नहीं है, ड्रामा और थिएटर दोनों की आयु 5000 वर्ष से ज्यादा, दोनों की आयु भी सेम होनी चाहिए, अलग अलग। तो प्रकृति के तत्व हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी आयु 5000 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। आप बोलेंगे ये कैसे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। विज्ञान में एक ऐसी चीज है जिसको लोगों ने अच्छे से समझा नहीं है, वो क्या चीज है, मैं आपको इसके बारे में शेयर करना चाहूंगा। और इसका बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था एक वैज्ञानिक जिसको हम कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, और मुझे भी इंटरेस्ट था कि जानने के लिए कि सच में ड्रामा हूबहू कैसे रिपीट हो सकता है। तो मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा कि मान लीजिए ये किताब है, ये बुक है, इसमें मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो इसे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ फॉर एग्जाम्पल, इसमें हाइट फाइंड कर सकते हैं क्या? तो इसलिए इसको कहा जाता है टू डायमेंशन। किताब पे अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, टू डायमेंशन, क्योंकि आप लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं, गहराई नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये बलून या स्पीयर लूं तो इसमें क्या है, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, और इसको कहते हैं 3D। क्या कहते हैं? 3D। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है कि एक और चीज है जो लोगों ने कभी समझा नहीं है, और वो है 4D, और उसका नाम है टाइम। तो टाइम क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं? आज तक विज्ञान प्रॉपरली टाइम को परिभाषित नहीं कर पाया है, डिफाइन नहीं कर पाया। हाउ टू डिफाइन नाउ? नाउ क्या होता है? फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट को कैसे डिफाइन करें? विज्ञान डिफाइन नहीं कर पाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बताता है कि एक और चीज होती है जिसको कहते हैं टाइम। तो टाइम और स्पेस को लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें टाइम को विजुअलाइज कीजिए, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या याद आएगा? सबसे पहले आपके माइंड में घड़ी याद आएगा। तो क्या घड़ी को हम टाइम कहेंगे? तो टाइम को हम कैसे समझते हैं, छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि इस टेबल पे एक कप रखा गया है, कप में चाय है, प्याला है, और अचानक में धक्का लगता है तो कप क्या होगा, गिरेगा, चाय फैल जाएगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो आपने देखा कप था, कप गिरा और कुछ परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन के आधार से हम जान पाते हैं टाइम चेंज हुआ, बिना परिवर्तन के हम टाइम का अनुभव नहीं कर पाते। हम जब बुजुर्ग होते हैं तब मालूम पड़ता है, अच्छा आप बुजुर्ग हो गए, अब मालूम पड़ा आपके बाल सफेद हो रहे हैं, परिवर्तन। तो बिना परिवर्तन किसका? परिवर्तन पदार्थ का। पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मैटर। साइंस की भाषा में पदार्थ को क्या कहा जाता है, 5 तत्वों को? मैटर। तो टाइम और मैटर का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है, वैसे टाइम और पदार्थ का भी आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर टाइम रिपीट हुआ तो पदार्थ भी रिपीट होगा। इसका मतलब हमारी शक्लें जो हैं बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेंगी। मैं सिंपल सा एक और एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सामने आप फोटो देख रहे हैं, किसका? अल्बर्ट आइंस्टाइन का। पूरे फिजिक्स के जगत में दो साइंटिस्ट बहुत फेमस है, एक का नाम था न्यूटन और दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन। न्यूटन के सारे सिद्धांत को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफी चेंज कर दिया और इसने एक थ्योरी दी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दो थ्योरीज दी, एक का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक का नाम है जनरल थ्योरी और दूसरा नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दो थ्योरीज दी गई, यहाँ पे दिखाई गई है, और इसने पूरे विज्ञान जगत को हिला के रख दिया, ऐसी थ्योरीज थी। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहीं ना कहीं टाइम के रिपीट होने की, साइक्लिक टाइम की कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में चर्चा करती है। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस थ्योरी का जिसने पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया। पूरे फिजिक्स के जगत में दो थ्योरीज हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी। पूरा काफी भयंकर परिवर्तन हुआ है। तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। इसमें से थ्योरी का एक कंसेप्ट ये बताता है जिसको कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। आइंस्टाइन ये बताता है कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती है। अभी सामने पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं, दोनों का जन्म में हार्डली एक दो मिनट का डिफरेंस होगा। क्या दोनों की आयु में सच में आप एक लंबा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? पॉसिबल है कि नहीं है? आमतौर पर कॉमन सेंस कहता है पॉसिबल नहीं है, बट आइंस्टाइन की ये थ्योरी ये बताती है ये पॉसिबल है। अगर उसमें से कोई एक भाई ऐसे यान में बैठता है, ऐसे रॉकेट में बैठता है जिसकी स्पीड लाइट की रफ्तार के आसपास हो, अगर वो जैसे ही ट्रैवल करना चालू करेगा उसकी आयु कम होनी चालू हो जाएगी, टाइम स्लो हो जाएगा, जिसको फिजिक्स में कहा जाता है टाइम डायलेशन। आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे टाइम डायलेशन, हिंदी में भी आपको इसके वीडियोस नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। और अगर वो भाई स्पेस ट्रैवल करके धरती पे पहुंचेगा, वो पाएगा कि अभी भी वो यंग है और धरती पर जो भाई था वो क्या हो चुका है, सच में ऐसे पॉसिबल हो जाएगा, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। तो हमको लगता है हमने टाइम को समझ लिया है, ऐसा नहीं है। टाइम एक बहुत ही गहन कंसेप्ट है जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया। मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं और इसकी चर्चा जगदीश भाई अपनी किताब पे करते हैं। आपने ये बुक देखी होगी, इसका नाम क्या है? साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और इसमें बताया गया है कि पेज नंबर 196 पे अ न्यू पैराडाइम ऑफ फिजिक्स, और जगदीश भाई ने ये पेपर प्रेजेंटेशन जर्मनी में किया था और उसमें भी वो साइक्लिक टाइम के कुछ कॉन्सेप्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। उसमें ये बताते हैं कि हमारा मनुष्य लोग कैसा है। सामने चित्र दिखाया गया, आपने मनुष्य लोग का चित्र देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि मनुष्य लोग के चित्र में सूक्ष्म लोग का चित्र कैसा है, स्ट्रेट है कि कर्व है? एक कर्व की तरह है। कर्व क्यों है? क्योंकि मनुष्य लोग जस्ट एक चित्र इमेजिनेशन है, ऐसे बताया गया है, सामने आप देख रहे हैं। तो मनुष्य लोग को कैसे दिखाया गया है? बिल्कुल एक गेंद की तरह, बॉल की तरह, मनुष्य लोग। तो हमें जो तीन लोग का चित्र दिखाया जाता है वो उसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन समझ रहे हैं? आधा सेक्शन दिखाया गया है। तो जगदीश भाई और कभी की भी मान्यता थी कि ब्रह्मांड, और आइंस्टाइन इस बात को मानता है कि ब्रह्मांड में इतना मैटर हो चुका है, मैटर मतलब गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, टाइम और स्पेस जो है बैंड हो गया है, बैंड होकर बिल्कुल एक बॉल की तरह हो चुका है। तो पूरा मनुष्य लोग एक गेंद की तरह है और सूक्ष्म लोग जो है कहां पर है, ऊपर है कि नीचे है कि सब तरफ है, इस मनुष्य लोग के चारों तरफ है। भले हम बाबा को याद करते हैं तो ऊपर याद करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में सूक्ष्म लोग जो है इस गेंद के चारों तरफ है। तो इसे कहा जाता है फोर डायमेंशन हाइपरस्फीयर, और जगदीश भाई इस बुक में इसकी चर्चा करते हैं, द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। जगदीश भाई ने इस बुक में चर्चा भी की है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात होती है कि हम में से बहुत से कम भाई बहने जगदीश भाई की लिटरेचर को अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इंटरेस्टिंग इसमें चीज क्या बताया गया है, मुझे याद है तभी मैंने जगदीश भाई की बुक नहीं पढ़ी थी, और मैं आइंस्टाइन आज से 20 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूं, तभी मैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। और थैंक्स टू द कॉलेज मुझे हर लेक्चर में बैठना अलाउड था, और मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब मुझे मालूम पड़ा कि आइंस्टाइन का यूनिवर्स का मॉडल कुछ इस प्रकार है, गेंद की तरह, तो फॉर एग्जाम्पल ये संभावना है कि मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथ, मनुष्य लोग मेरे हाथ में है, तो एक व्यक्ति है क्या करता है, रॉकेट से पूरे इस मनुष्य लोग का एक चक्कर लगाता है, तो तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम जाएगा? 5000 वर्ष। इतना बड़ा है ब्रह्मांड, मनुष्य लोग प्रकाश की गति से मान लीजिए एक चक्कर लगाता है, और लगाते लगाते बीच में उसने एक घटना को देखा, एक घटना घटित हुई, साइकिल वन, एक घटना घटित हुई और उसने एक साइकिल पूरा किया। अगर ये मनुष्य दोबारा उस साइकिल का चक्र लगाएगा, वो घटना ठीक उसी टाइम पे घटेगी और हर बार उसको ऐसे ही फील होगा कि इस घटना को वो पहली बार देख रहा है। इसीलिए हमें भी हर बार यही फील होता है, ये चक्र पुराना नहीं लेकिन हर बार नया है। ये आइंस्टाइन की जब इस यूनिवर्स की जब मैंने बात सुनी तो मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोचा अरे वाह कितनी अच्छी बात है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि बाबा क्यों कहते हैं ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये बहुत ही बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम में से बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर वाइंड अप करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, कल्पना कीजिए कि शिव बाबा के पास एक बहुत बड़ा कैमरा है जिससे वो पूरे ब्रह्मांड का फोटो खींच सकते हैं। अब जैसे मैंने कप का एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए कि कप गिरा, चाय नीचे फैल गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। कल्पना कीजिए कि आप टाइम को रिवर्स कर सकते थे, टाइम को आप पीछे ले जा सकते, तो आपको ये दृश्य कैसे दिखाई देता? चाय वापस कप में आ गई और कप कहां पे आ गया? टेबल के ऊपर। तो टाइम को आप मैटर के साथ ही समझ पाते हैं, ऐसे विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि शिव बाबा इस समय कितना बज रहा है, मान लीजिए 1:15 बज रहा है, 1:15 बजे फरवरी का महीना है 2020, शिव बाबा एक कैमरे से, ग्लोबल कैमरे से कल्पना कीजिए एक फोटो खींच रहे हैं। इस समय मैंने हाथ ऐसा किया हुआ है और आप सभी हॉल में बैठे हुए हैं। हम सभी कौन हुए? फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी क्या हुई? मैटर। टाइम कितना बज रहा है? 1:15, और शिव बाबा ने एक क्लिक करके फोटो खींच लिया पूरे ब्रह्मांड का। ठीक है, टाइम पीछे नहीं जा सकता, टाइम का एरो ऑफ टाइम होता है। अब कल्पना कीजिए कि पूरा एक साइकिल पूरा हो गया, ठीक दूसरे साइकिल में ठीक साइकिल आएगा और फरवरी का महीना 2020, मेरे हाथ की अवस्था भी ऐसी होगी, आप सभी हॉल में ऐसे ही बैठे रहेंगे, पूरे ब्रह्मांड की भी अवस्था ऐसे ही होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी शक्लें भी 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होती है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है भविष्यवाणी। कोई भी जब अगर भविष्यवाणी करता है, इसका मतलब क्या हुआ है? आगे जो होने वाला है वह पहले से ही पूर्व निश्चित है। और यह अब की बात नहीं है, पुराने जमाने में ग्रीक फिलोसोफर्स मानते थे, स्टोइक्स हुआ करते थे, वो इस बात को मानते थे कि सारी घटना वैसे ही हूबहू रिपीट होती है। यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम है, पॉइंटकेर और नित्से, ये भी इस बात को मानते थे कि साइक्लिक टाइम या टाइम जो है टाइम की रिपीटेशन की बात को सपोर्ट करते हैं। तो सारांश में मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, सारांश में देखिए ये ऐसे चित्र बताया गया है, आपने डायमंड हॉल में भी ऐसा पिक्चर देखा होगा, मनुष्य लोग, चारों ओर सूक्ष्म लोग और ब्रह्म लोग। तो जगदीश भाई इस बात का समर्थन करते हैं, उन्होंने इस बुक में इसके ऊपर प्रकाश डाला है। सारांश में मैं ये बताना चाहता हूँ, कि साइंटिफिक जो थ्योरीज होती हैं उस पे हम कहीं गलत प्रूव कर रहे हैं, हमारा ये इंटेंशन नहीं है, हमारा वो काम ही नहीं है। हमारा काम है लोगों को सरल भाषा में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग करवाना, और लोग जो बड़े डंके की चोट पे बताएंगे कि नहीं ये थ्योरी सही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी साइंस की थ्योरी अल्टीमेट थ्योरी नहीं होती और हर बार साइंस बदली हुई है। इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, जिन्होंने जो साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे उनको मालूम है कि हमें बताया जाता था स्कूल में कि सारा तत्व किससे बना है? एटम से। एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। अब बाद में मालूम पड़ा एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसका चक्र लगाता है। फिर आगे कुछ वर्षों के बाद मालूम, हमको लगा कि ये सत्य है, हमको लगा कि ये अल्टीमेट थियरी है, आगे कुछ वर्षों के बाद मालूम पड़ा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बने हुए हैं। तो हमको लगा नहीं अभी ये सत्य है, बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ है। आगे जाके फिर मालूम पड़ा कि और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और ऐसे करके उनकी संख्या बढ़ने लगी, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। तो हमको लगा हाँ अब ये सत्य है, अब नई थियरीज क्या बता रही हैं, सत्य कुछ और ही है, ये कुछ और ही था। उसे कहते हैं क्वांटम फील्ड थियरी, उसमें बताया जाता कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, सब तरंगे ही तरंगे हैं, सब तरंगे ही तरंगे हैं। अब सोचिए, तो हमारे कहने का भावार्थ यह है कि हमें कोई साइंटिफिक थियरी को वो करना है, कमेंट करना है, ऐसे नहीं है, लेकिन साइंस डंके की चोट पे ये नहीं कह सकता कि हाँ ये हमारी अल्टीमेट थियरी है। तो हम उन पे कमियां फाइंड कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है ही नहीं, ना हम संगम युग का टाइम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सारांश यह है कि कैसे साइंटिफिक तरीके से बताया जाए कि साइंस जिस प्राउड से बताते हैं कि ये इवोल्यूशन थ्योरी सही है, ये थ्योरी सही है, ये एक पॉसिबिलिटी है, उनके पास अभी लॉजिक है तो लग रहा है कि सही है, बट ये अल्टीमेट ट्रूथ है ऐसे नहीं है। तो इस प्रकार शॉर्ट में इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, इसी प्रकार डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, आप नोट करें, स्पार्क के काउंटर पे जमा करें, अगर आपको बाद में याद आता है तो आप ईमेल करें, अगर उत्तर संतुष्टताजनक नहीं लगता है वापस भी आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स राजीव गुप्ता भाई जी, और सबको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। दिस इज जस्ट ए न्यू बिगिनिंग फॉर ए न्यू चैप्टर, सो बहुत सारे काम करने हैं अभी समय के कारण, अभी पूरा करते हैं सेशन को। अभी श्रीकांत भाई को नेक्स्ट सेशन कंडक्ट करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। ओम शांति।